नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने रक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकास के लिए आत्मनिर्भरता पर बल दिया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने वरिष्ठ चालक दल के 25 सदस्यों की सेवाएं समाप्त कर दी है। और आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता आज जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और महागठबंधन के नेता अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जनसभाएं और रैलियां कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में एक जनसभा में कहा है कि केवल एनडीए सरकार ही गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी को दूर कर सकती है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने काराकाट संसदीय क्षेत्र में जनसभा की। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव के लिए 238 नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन था। इस बीच राजधानी में चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सभी दलों के उम्मीदवार समर्थकों के साथ अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के लिए कल 3 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की गई। पंजाब और आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट में डॉ सुभाष शर्मा, फिरोजपुर से राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी और मैदान में उतर रहे हैं, जबकि संगूर संसदीय क्षेत्र से अरविंद खन्ना पार्टी के उम्मीदवार होंगे। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया है। लोकसभा चुनाव के 6 चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन रहा। इस चरण में 25 मई को 6 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश की कुल 57 सीटों पर मतदान होगा। 6 चरण में दिल्ली की सभी 7, हरियाणा की कुल 10, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8-8, ओडिशा की 6 और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के लिए मतगणना 4 जून को होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं। इनमें 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मान प्रदान किए जाते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने वरिष्ठ चालक दल के 25 सदस्यों की सेवाएं समाप्त कर दी है। बिना किसी पूर्व सूचना के इनके एक साथ अवकाश पर जाने के कारण एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सेवाओं पर असर पड़ा है। अब तक लगभग 80 उड़ानें रद्द करनी पड़ी है। आज भी 85 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। प्रभावित यात्री पूरा किराया वापस ले सकते हैं या बाद की तिथि के लिए यात्रा कार्यक्रम तय कर सकते हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बताया है कि वह आज मूल सहयोगी कंपनी एयर इंडिया की मदद से 20 यात्रा मार्गों पर 283 उड़ानों का संचालन करेगी। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने रक्षा क्षेत्र में बुनियादी ढांचा विकास के लिए आत्मनिर्भरता पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि देश इस क्षेत्र में औरों पर निर्भर नहीं रह सकता। आज नई दिल्ली में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की राष्ट्रीय संगोष्ठी और प्रदर्शनी के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता केवल एक नारा नहीं बल्कि देश के आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण सूत्र है। आत्मनिर्भरता से बुनियादी ढांचे की पूंजीगत लागत कम होती है। यूक्रेन के लिए अमेरिका की देर से मिली सहायता का उदाहरण देते हुए श्री अरमाने ने कहा है कि विश्व की भू राजनीति में कोई भी विश्वसनीय मित्र नहीं होता और देश दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकता है। उन्होंने रक्षा क्षेत्र के लिए नवाचारी और उन्नत प्रौद्योगिकी निर्मित उपकरणों की आवश्यकता बताई। रक्षा सचिव ने कहा है कि यह संगोष्ठी बुनियादी ढांचा विकास के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचार विमर्श और सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। डीआरडीओ प्रमुख डॉक्टर समीर वी कामत ने कहा है कि विस्फोटकों के संग्रह के लिए उन्नत तकनीक से निर्मित बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिकल जालसाजी का पर्दाफाश करते हुए 2 डॉक्टर सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति करने वालों पर पैसा लेने, अपॉइंटमेंट तय करने और रोगियों से रिश्वत लेने के लिए फर्जी चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाने के आरोप साबित हुई। सीबीआई ने इनमें संबंधित 15 स्थानों पर छापेमारी और एफआईआर दर्ज की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाल में डॉक्टर और मेडिकल सप्लायर्स के खिलाफ ये दूसरी बड़ी कार्रवाई है। पिछले वर्ष सीबीआई ने एक ऐसी ही मामले में सफदरजंग अस्पताल के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में कल तक भीषण गर्मी जारी रहेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान तटीय गुजरात और कल तक केरल तथा माहे में गर्मी और उमस भरा मौसम रहेगा। इस महीने की 11 तारीख तक उत्तर पूर्वी भारत में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ ही हल्की से मध्यम वर्षा की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी भारत में यह स्थिति अगले 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में बनी रहेगी। दक्षिण भारत में इस महीने की 12 तारीख को तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और कर्नाटक में भी वर्षा होने की संभावना है। पश्चिम और मध्य भारत में इस महीने की 12 तारीख को महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ छिटपुट वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की आशंका नहीं जताई गई। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने 2024 के लिए आधुनिक खानपान की आदतों के अनुरूप भारतीयों के लिए उन्नत आहार के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषण संस्थान NIN के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार की गई इस दिशा निर्देश में विशेष रूप से लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय रहने की सलाह दी गई है। इनमें नियमित रूप से व्यायाम, नमक का सीमित सेवन, उच्च वसा, चीनी, अति प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को कम करने और मोटापे, अधिक वजन को रोकने के लिए कदम उठाने की सलाह दी गई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर से मुलाकात की। बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा है कि निकटतम पड़ोसी होने के नाते दोनों देशों के बीच आपसी हित और पारस्परिक संवेदनशीलता से संबंध मजबूत होते हैं। उन्होंने कहा है कि यह अभिव्यक्ति पड़ोसी प्रथम नीति और सागर मिशन में निहित है। विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत मालदीव के विकास के प्रमुख भूमिका निभाता है। बुनियादी ढांचा परियोजना और सामाजिक सरोकार से लेकर चिकित्सा सहायता देकर मालदीव के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भारत ने सीधे योगदान किया। उन्होंने कहा है कि दुनिया आज एक अस्थिर और अनिश्चित दौर से गुजर रही है। ऐसे समय में पड़ोसी देशों की निकटतम साझेदारी बहुत मूल्यवान होता है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तनाव बढ़ने की खबर है। पाकिस्तानी प्रशासन 11 मई को होने वाले विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती कर रहा है। हालांकि यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर किसी बल प्रयोग के खिलाफ प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है। दोनों दलों ने कहा है कि यदि प्रशासन बल प्रयोग करता है तो वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त बयान में कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन अन्यायपूर्ण कराधान, महंगाई और भारी बिजली बिलों के विरोध में की गई है। भारत की स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने जद्दा में चल रही सऊदी स्मैश में क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। बत्रा ने विश्व की 14वें नंबर पर काबिज जर्मनी की नीना मत्तलहम को 11-6, 11-9, 11-7 से मात देकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने लखनऊ सुपर जॉइंट्स को 10 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जॉइंट्स ने निर्धारित ओवर में 4 विकेट पर 165 रन बनाए। आज धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।